मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, अभी स्ट्रीट डॉग्स पर जो सुप्रीम कोर्ट का संशोधित आदेश आया है, मैं उस विषय पर बात करने जा रहा हूं। मैं खासकर जो बात करूंगा वो दो अलग एंगल से करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है उसके बारे में आप जानते ही हैं। सामान्य तौर पर मैं उसकी चर्चा यहां थोड़ी सी करना चाहूंगा ताकि आपके दिमाग में वो बातें तरोताजा हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पशु प्रेमी हैं वो आवारा कुत्तों को गोद ले सकते हैं, उन्हें गोद लेने की छूट है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो कुत्ता गोद लिया है वह सड़क पर वापस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये, आपको मालूम है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, यानी कि जो कैपिटल रीजन का जो क्षेत्र है वहां जितने भी कुत्ते हैं उन कुत्तों को पकड़ करके आश्रय स्थल में डाला जाए, उनकी व्यवस्था की जाए, इस तरह की बातें की थी। इस पर हम लोगों ने विस्तार से बातें डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत की हैं। बाद में कुछ जो एनजीओ और पशु प्रेमी थे वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि आप अपने इस आदेश पर पुनर्विचार करें, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस पर पुनर्विचार किया। पुनर्विचार करने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह नया आदेश दिया है। उसके तहत जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, वह कुल मिलाकर के यह कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं, आवारा शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि उन्हें आश्रय स्थल में रखा जाए, उनकी नसबंदी की जाए और डीवार्मिंग और टीकाकरण के बाद उनको उसी इलाके में छोड़ा जाए जिस इलाके से उन्हें पकड़ा गया था, यानी कि जिन स्ट्रीट डॉग को गिरफ्तार करने की बात कही गई थी अब उन्हें स्वतंत्र करने की बात कही गई है, लेकिन डीवार्मिंग करने के बाद, उनके टीकाकरण के बाद और उनकी नसबंदी करने के बाद, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। लेकिन इसके साथ ही साथ उसने दो तीन बातें और भी कही हैं कि अब इनको आप छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद क्या होगा, ये फिर भूखे रहेंगे और फिर लोगों को काटेंगे। इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी नगर पालिका हैं उन्हें कुत्तों के लिए डेडिकेटेड फीडिंग जोन बनाना पड़ेगा। डेडिकेटेड फीडिंग जोन का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जो कुत्तों को भोजन कराने के काम आएगा, उस क्षेत्र में ही कुत्तों को भोजन दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा है कि जो लोग कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाते हैं वो इसे बंद करें, और यदि वे ऐसा करते हैं तो इस पर बकायदे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक दो और भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी नगर निकायों को अपने यहां के डॉग शेल्टर की संख्या, पशु चिकित्सक, कुत्ता पकड़ने वाले लोग, कुत्ता पकड़ने के विशेष वाहन और पिंजरे आदि की संख्या बताने का निर्देश दिया, यानी कि वे इनकी संख्या बताएं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि प्रत्येक नगर निकाय एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा जिसमें इन आदेशों के उल्लंघन की शिकायत की जा सकेगी। दोस्तों, जो पहला आदेश है अगर इससे आप तुलना करेंगे तो इसमें आपको दो परिवर्तन दिखाई देंगे। पहला तो यह है कि जो पकड़े गए कुत्ते थे उनका वंध्याकरण और टीकाकरण करने के बाद रेबीज संक्रमित और आक्रामक कुत्तों को छोड़कर बाकी को उसी जगह वापस छोड़ दिया जाएगा, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो एनसीआर के लिए था, लेकिन अब यह आदेश पूरे देश पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को आदेश जारी किया है। राज्यों को कहा गया है कि वे कम से कम 70% आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण करें, यानी कि केंद्र सरकार अब इसकी बकायदे निगरानी करेगा। और दोस्तों, केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि नसबंदी और टीकाकरण पर वह राज्यों को, यानी कि नगर निकायों को कह लीजिए, प्रति कुत्ता 800 रूपये और प्रति बिल्ली 600 रूपये का अनुदान भी देगा। और साथ ही साथ ये भी राज्यों से कहा गया है कि वो अपने इस कार्य की मासिक रिपोर्ट पशु कल्याण बोर्ड को भेजें। कहने का मतलब यह है कि अब जो तंत्र है वो एक्शन में आ गया है। देखिए, इस पूरे के पूरे मामले से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो प्रश्न उभर कर आते हैं। पहली बात तो यह है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने इस निर्णय में, यह निर्णय तीन जजेस की बेंच ने दिया है, जो पहला निर्णय आया था वो दो जजेस की बेंच ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि पहले जो निर्णय आया, 11 अगस्त को पहला निर्णय आया था, वह बहुत कठोर था, बहुत कठोर था। कठोर इस मायने में कि परिस्थितियों का पूरी तरह से आकलन किए बिना ही वह निर्णय ले लिया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो क्या सच में सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में इस तरह के निर्णय लेता है, या उसे जल्दबाजी में इस तरह के निर्णय लेना चाहिए? और ध्यान देने की बात है कि ये जो मामला है, यह सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान से लिया था, यानी कि कोई सुप्रीम कोर्ट के पास गया नहीं था इसके लिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था इस मामले का। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले भी मैंने चर्चा की थी भूषण स्टील के मामले में। भूषण स्टील के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने उस डिसीजन को अव्यवहारिक बताते हुए उसके विरुद्ध डिसीजन दिया। अब यहां देखिए कि आपको सीधे सीधे जो न्यायिक सक्रियता है उससे जुड़ा हुआ मामला दिखाई दे रहा होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने कानून होते हैं, नियम होते हैं, उसी के अंतर्गत उसे अपना फैसला सुनाना होता है, लेकिन जो व्यावहारिक जीवन है वो थोड़ा सा अलग होता है। और व्यावहारिक जीवन में कौन जाता है? एक्सक्यूटिव्स जाते हैं। एक्सक्यूटिव उसकी परेशानी को समझते हैं कि किसी बात को लागू करना कितना आसान है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो दूसरा पॉइंट खड़ा होता है कि इसमें नगर पालिकाओं को निर्देश दिए गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या नगर पालिकाओं के पास इतने शेल्टर्स हैं? बड़े बड़े शहरों में शेल्टर्स नहीं है, तो क्या उनके पास इतने संसाधन हैं कि वो इतने शेल्टर्स का निर्माण कर सकें, उनको फीड कर सकें? क्या उनके पास इतने लोग हैं कि नसबंदी की जा सके? क्या उनके पास इतने चिकित्सक हैं कि उनका इलाज कराया जा सके? जब आप इनके व्यावहारिक पक्ष पर विचार करेंगे तो पाएंगे कि नगर पालिकाओं के लिए, नगर निकायों के लिए यह कर पाना आसान नहीं होगा। दोस्तों, फिर से एक तीसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है कि जब कुत्ते इस तरीके से छोड़ दिए जाएंगे और नगर पालिकाएं उनको ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगी, तो फिर स्थिति क्या होगी? क्या जनता में आक्रोश पैदा होगा? क्या जनता और जो पशु प्रेमी हैं उनके बीच फिर से एक संघर्ष की स्थिति पैदा होगी? क्योंकि हमारे पास अभी जो आंकड़े हैं, जो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं, वो डरावने हैं। मतलब हर साल सोच करके देखिए कि रेबीज से लगभग 18-20 हजार लोगों की मृत्यु हो रही है। 18-20 हजार की जो संख्या है वो अपने आप में एक प्रकार से डरावनी संख्या है। जब कुत्तों को फ्री छोड़ दिया जाएगा और उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी, तो फिर से सवाल ये उठेगा कि कोर्ट के आदेश का क्या हो रहा है। तो यहां फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको दिखाई देगा कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। और यदि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया और इस पर कोर्ट ने फिर कोई एक्शन नहीं लिया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि धीरे धीरे कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाएगी? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जब किसी भी बात को लागू करने जाता है, कोर्ट की बात को, तो जरूरी नहीं कि वे ज्यों का त्यों लागू करने लायक हों, क्योंकि उसे न जाने कितने तरह की व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहां हम देख रहे हैं कि जो हमारे नगर निकाय हैं और जो हमारे जो ग्रामीण निकाय हैं, वो किस तरीके से आर्थिक संकट से बुरी तरह से जूझ रहे हैं, बुरी तरह से जूझ रहे हैं। और फिर जब ये नगरीय निकाय जाएंगे कुत्तों पर नियंत्रण करने के लिए, तो डेफिनेटली उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, और वो दिखाएंगे कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो दोस्तों, स्थिति क्या होगी हम नहीं जानते, लेकिन अभी सुनवाई जारी है, फाइनल डिसीजन आना है, देखते हैं कि अंतिम निर्णय क्या होता है। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में कुछ दोस्तों के नाम हैं: महेंद्र चावड़ा जोधपुर से, प्राची शुक्ला, अंशुल सागर मेरठ उत्तर प्रदेश से, और उजैर खान बदायूं उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।